शिक्षार्थियों, आज हम माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि है पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबंधन। शिक्षार्थियों, जब भी हम बात करते हैं पर्यावरणीय क्षरण और आपदा प्रबंधन की, तो उसकी शुरुआत कहीं न कहीं पर्यावरण के उस रूप से होती है जबकि हम बहुत ही संतुलित और एक तरह से कहें कि मनुष्य के लिए अनुकूल पर्यावरण रहता है और धीरे धीरे उसमें क्रमिक रूप से अवनति होती है। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने आसपास की जगह पर हम एक बहुत ही अनुकूल पर्यावरण देखते हैं, जहां पर वन भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, पशु भी हैं, मानवीय गतिविधियां भी आसानी से चल रही हैं, और हम पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व की संकल्पना के साथ अपने जीवन को जी रहे होते हैं। वहां पर पर्यावरण या पारिस्थितिकी के साथ हमारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध होता है और संसाधनों का उपयोग करते हुए हम उनको सुरक्षित भी रखते हैं, उनका उचित उपयोग भी करते हैं और भविष्य के लिए उनको संरक्षित भी करते हैं। लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती और ये बदलती हैं, और कहीं न कहीं हमारा जो उपभोग है संसाधनों का वो भी बदला। अब आप देखें तो एक तरफ ग्रामीण परिवेश है जहां पर आप खुली जगह देखेंगे, बस्तियां उतनी सघन नहीं है और लोग कृषि कार्य में और दूसरी आर्थिक क्रियाओं में जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर शहर हैं जहां पर आप बहुत ही सघन बसाहट देखेंगे, बहुमंजिली इमारतें देखेंगे, कल कारखाने देखेंगे और वाहनों का शोर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन की वजह से पर्यावरण पर उसका हस्तक्षेप भी बढ़ा। हम कैसे महसूस करते हैं कि जो हमारा हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें हैं वो कई बार इतनी हानिकारक हो जाती हैं कि उनमें सांस लेना भी दुष्कर हो जाता है, और सांस ले भी रहे हैं तो वो जो दूषित वायु है वो हमारे शरीर में जा रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी ओर मानवीय गतिविधियों की वजह से दूसरी पर्यावरणीय समस्याएं प्रारंभ हो रही हैं, प्रदूषण की समस्या है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, हमारा पेयजल दूषित हो रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वन क्षेत्रों में कटाव हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि मानवीय गतिविधियों की वजह से जो पर्यावरण के साथ संबंध था सौहार्दपूर्ण, वो कहीं न कहीं टूट रहा है। हमारी गतिविधियां बहुत सारी पर्यावरणीय प्रदूषण की दशाएं भी उत्पन्न कर रही हैं और पर्यावरण की गुणवत्ता में भी कहीं न कहीं ह्रास हो रहा है। ये सारी समस्याएं किस जो शुरुआत है वो वास्तव में मनुष्य की अनियंत्रित गतिविधियों की वजह से हुई, क्योंकि पर्यावरण या कहें कि तो प्रकृति जो है वो अपना संतुलन खुद बनाए रखती है। जैसे अगर कहें कि कहीं पर मान लीजिए एक प्राकृतिक रूप से कोई अगर पेड़ गिर रहा है तो उसकी स्थान पर एक दूसरा पेड़ तैयार भी हो रहा है, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से वनों का तेजी से कटा हुआ, वनों में उतनी वन प्राकृतिक रूप से उतना तेजी से नहीं तैयार होते हैं। हालांकि बहुत सारी कोशिशें भी की जाती रही कि वनरोपण हो, वृक्ष लगाए जाएं, लेकिन शायद ह्रास की दर जितनी तेजी से थी उतनी तेजी से वृक्षारोपण नहीं हुआ, या जो दूसरी मानवीय गतिविधियां थी वो जितनी तेजी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी उसको संरक्षित करने का उतना तेजी से प्रयास नहीं हुआ। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हम बहुत सारी त्रासदियां अपने जीवन में हम देखे और सुने उनके बारे में। आप देखिए कि चाहे अगर हम कहें पर्यावरण क्षरण की दशा में जो मानव जनित थी, अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, जब एक जहरीली गैस एक औद्योगिक दुर्घटना की वजह से फैली और उसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। हम चेर्नोबिल का नाम सुनते हैं जहां पर कि परमाणु रिसाव की वजह से वहां पर कितनी ज्यादा संख्या में जन और धन की हानि हुई। उसके अलावा भूस्खलन की स्थितियां हैं पहाड़ी क्षेत्र में आप देखें, और बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं भी हुई, चाहे वो सुनामी की घटना हो, चाहे वो स्मॉग हो आप देखें। तो इस तरह से बहुत सारी मानव जनित भी घटनाएं होती हैं और दूसरा मनुष्य की गतिविधियों की वजह से प्रकृति भी कुछ ऐसे घटनाएं करती है। तो इस तरह से हम देखें तो मानव की गतिविधियों की वजह से पर्यावरण में असंतुलन हुआ और पर्यावरण क्षरण हुआ। लेकिन जब क्षरण होता है या कुछ ऐसी आपदाएं आती हैं, तो हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं कि कैसे हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, कैसे हम आगे ऐसी गतिविधियां या ऐसी घटनाएं ना होने दें, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्षरण कैसे हो रहा है और कैसे हम उसे सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले बात आती है पर्यावरण है क्या। अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थों पर जाएं तो आवरण से तात्पर्य है कि जो हमें घेरे हुए, यानी ऐसी चीज जो हमारे हमें चारों ओर से घेरे हुए है, यानी परिवेश जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, या हम कहें कि जहां पर हम रह रहे हैं, जहां हम अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, वही हमारा परिवेश या पर्यावरण है। पर्यावरण बहुत तरीके के हो सकते हैं, आपने सुना भी होगा, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, साहित्यिक पर्यावरण। लेकिन हम जिस पर्यावरण की बात करेंगे वो पर्यावरण थोड़ा सा भिन्न है, और उस पर्यावरण का तात्पर्य है कि प्राकृतिक रूप से हमारे चारों ओर जो परिवेश है और जिस परिवेश में हम अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, वो पर्यावरण हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण है और वहीं पर मानवीय गतिविधियां या क्रियाएं हो रही हैं। जैसे अगर आप बात करें कि आप मान लीजिए किसी जगह पर हैं, मान लीजिए आप एक पार्क में हैं, तो आपके उस पर्यावरण में पेड़ पौधे भी हैं, वहां हो सकता है एक तालाब भी हो, वहां पर और लोग भी हैं, वहां पर गतिविधियां हो रही हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो उस परिवेश में, वो पर्यावरण में वो सारी चीजें सम्मिलित हैं। लेकिन जब आप किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो वही पर्यावरण बदल जाता है। तो इस तरह से पर्यावरण मुख्यतः स्थानिक होता है और उसमें समस्त चीजें सम्मिलित हैं। लेकिन क्या उसमें केवल प्राकृतिक चीजें सम्मिलित हैं? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय गतिविधियां भी हो रही हैं। तो बात आती है वर्गीकरण की, कि पर्यावरण को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। जैसे हमने बात की कि पर्यावरण कई तरीके का हो सकता है, वो सामाजिक पर्यावरण भी हो सकता है और राजनैतिक साहित्यिक भी हो सकता है। तो इसे समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसके वर्गीकरण को जानें। तो अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो उसमें समस्त जैविक और अजैविक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो इसमें अगर हम जैविक वस्तुओं की बात करें तो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वन जीव हैं, दूसरी वनस्पतियां हैं, मनुष्य है। तो इस तरह से ये सभी जैविक तत्व उसमें सम्मिलित हैं। उसके अलावा उसमें अजैविक तत्व भी सम्मिलित हैं, चाहे वो मिट्टी की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो या हवा की बात हो। तो इस तरह से प्राकृतिक परिवेश में जैविक और अजैविक दोनों ही घटक सम्मिलित होते हैं और ये घटक जो है इनमें कहीं ना कहीं अंतःक्रिया हो रही होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों के साथ अंतःक्रिया करता है, उस तरह से एक नए परिवेश का निर्माण होता है। फिर बात आती है मानव निर्मित पर्यावरण की। मनुष्य वास्तव में किसी भी प्रकार के पर्यावरण में परिवर्तन ला रहा होता है। तो अगर देखिए तो हम प्राकृतिक पर्यावरण में जहां एक हम प्रमुख कारक हैं किसी भी कार्य को करने के, वहीं हम एक मानव निर्मित परिवेश की संरचना भी करते हैं। जैसे हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं, हम मान लीजिए किसी क्षेत्र में मकान का निर्माण कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, स्कूल का निर्माण हो रहा है, पुल पार्क का निर्माण हो रहा है, तो इस तरह से मानव निर्मित पर्यावरण में एक और प्राकृतिक वस्तुएं भी हैं, दूसरा उन प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए कुछ नवीन निर्मित चीजें भी हैं। तो इस तरह से वास्तव में मनुष्य का पर्यावरण यानी मानव निर्मित पर्यावरण मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया के कारण निर्मित होता है। साथ ही मनुष्य केवल प्राकृतिक घटनाओं के साथ अंतःक्रिया नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो और भी कई सारे पर्यावरण का निर्माण करता है, चाहे उसमें सामाजिक पर्यावरण हो, सांस्कृतिक पर्यावरण हो और दूसरे प्रकार की गतिविधियां हो। तो इस तरह से मानव निर्मित पर्यावरण में मनुष्य के साथ या प्रकृति के साथ दोनों ही तरह से अंतःक्रिया हो रही होती है। तो अगर आप पर्यावरण के घटकों की बात करें तो मुख्यतः उसमें तीन बातें हमें समझ में आती है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक घटक, जिसमें कि जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल सम्मिलित है। तो दूसरा घटक है मानव निर्मित घटकों में शामिल है पार्क, कृषि भूमि, शिक्षा, उद्योग धंधे, रेल, इमारतें, यानी वो ऐसी चीजें जो मनुष्य निर्मित करता है। तीसरा जो घटक है वो है सामाजिक, और वास्तव इस सामाजिक घटक में ही सारी अंतःक्रियाएं हो रही होती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, आर्थिक क्रियाएं हो, राजनैतिक हो, तकनीकी हो, परिवार हो, धर्म हो, समुदाय हो, यानी समस्त अंतःक्रियाएं या मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो यहां पर हो रही होती हैं, और यही तीनों घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और वहां पर हो रही अंतःक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। लेकिन क्या पर्यावरण स्थैतिक होता है या उसमें बदलाव भी होते हैं? लेकिन इसको आप देखें कि पर्यावरण कभी स्थैतिक नहीं होता है, वो स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन इस रूप में होता है कि जो प्राकृतिक घटक हैं वो बदलते हैं, मनुष्य है वो अपनी गतिविधियों के माध्यम से एक ओर प्राकृतिक घटकों में परिवर्तन ला रहा होता है, दूसरी ओर सामाजिक परिवेश में या आर्थिक परिवेश में या जो अन्य सामाजिक घटक हैं उनमें भी परिवर्तन ला रहा होता है। तो इस तरह से जो पर्यावरण है उसमें गतिशीलता बनी रहती है, लेकिन गतिशीलता के साथ साथ उसमें आप विविधता भी देखते हैं। गतिशीलता को आप इस रूप में देख सकते हैं कि कैसे जैविक और अजैविक घटक खुद गतिशील है, स्थिर नहीं है, और उनके मध्य जो अंतःक्रिया है वो भी चलायमान है, वो भी स्थिर नहीं रहती। दूसरी बात है कि जब इनमें परिवर्तन हो रहा होता है इन घटकों में, तो विविधता भी अपने आप आई जाती है। तात्पर्य यह है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे तो आपको वहां पर्यावरण में विविधता देखने को मिलेगी। हम अगर दूसरी जगह का उदाहरण देखें, हम भारत का ही उदाहरण लें, तो आप पाएंगे कैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पर्यावरण आपको देखने को मिलेगा। आप अगर हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको ठंड मिलेगी, वहां पर हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपको हिमाच्छादन भी मिले, वहां की घाटियां हैं वहां पर आपको घास के मैदान मिल सकते हैं जहां खेती भी हो रही है, फलों के बागान आपको मिल सकते हैं, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर आर्थिक क्रियाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप मरुस्थली क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर पर्यावरण दशाएं जो है वो आपको बदली हुई दिखाई देंगी, वहां पर आपको हो सकता है रेत के टिब्बे भी दिखाई दे, वहां पर हो सकता है आपको अगर फलों के बागान ना दिखें लेकिन वहां आपको ऊंट पालन या दूसरी तरह की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। उसी तरह आप अगर दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र में जाएं तो वहां पर आपको रबर के प्लांटेशन या बागान देखने को मिल जाएंगे, चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे, और वहां पर मसालों की खेती भी हो रही है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां पर एक तरफ मैनग्रोव भी देखने को, यानी सुंदरी वृक्ष भी देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको नारियल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि स्थान के साथ पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन आता है, विविधता आती है, और पर्यावरणीय विविधता के साथ साथ मानव निर्मित पर्यावरण भी बदलता है। अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएं तो वहां पर आपको अलग तरीके का परिवेश देखने को मिलेगा, जहां पर हो सकता है घरों की बसाहट सघन ना हो, वहां पर खुले मैदान हो, खेत हो, परिवहन के साधनों का उतना ज्यादा विकास ना हो, यानी आपको बहुत सघन रोड ना मिले। लेकिन शहरी क्षेत्र में जाएंगे वहां आपको सघन रोड मिलेगी, गगनचुंबी इमारतें मिलेंगी, कल कारखाने मिलेंगे। तो गांव से शहर की ओर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विविधता देखने को मिलेगी। और ये तो एक बड़े क्षेत्र की बात हुई, ये अंतर आप खुद महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए एक आप किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में रह रहे हो और आपने हो सकता है दूसरे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति ना देखी हो, लेकिन सामाजिक विविधता तो आप देख सकते हैं। आप गांव से शहर की ओर जाएं या शहर से गांव की ओर जाएं तो ये अंतर आपको खुद ब खुद महसूस होगा। अब हमने विविधता की बात की, लेकिन हम पर्यावरण की बात क्यों कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पर्यावरण हमारे चारों ओर ना हो तो क्या होगा? वास्तव में हमारी किसी भी प्रकार की गतिविधि का जो आधार है वो पर्यावरण है। पर्यावरण है तो हम हैं, और हमारे द्वारा की गई गतिविधि का इस पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो उसी तरह हमारी इस पर निर्भरता भी है। अब चाहे देखें तो हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होती है। भोजन की आवश्यकता है तो अन्न का उत्पादन इस पर्यावरण में होता है, भूमि में होता है, जिसमें जल प्रदान आप उसको करते हैं, बीजों को बोते हैं। आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं तो उनके लिए कच्चा माल भी यहां से मिलता है। आपको खनिज की प्राप्ति, आर्थिक गतिविधियां कैसे संभव होती हैं, खनिजों पर निर्भर होती हैं। वो हमें कहां से मिलता है, वो भी हमें इस भूमि से मिलता है जो कि इस प्राकृतिक परिवेश का ही अंग है। दवाएं का निर्माण होता है तो उस दवाओं का निर्माण भी इन तत्वों से जो हमें विभिन्न वनस्पतियों से, औषधीय वनस्पतियां होती हैं उनसे मिलते हैं और उनसे भी औषधियों का निर्माण होता है। दूसरी ओर ये तो हमें दृश्य लाभ है, यानी हम जो जिन लाभों को देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर यही परिवेश हमें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यही परिवेश हमें बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो बाढ़ हो, उनसे भी कई बार बचाता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन के अस्तित्व के लिए इस पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, लेकिन हमारी ये निर्भरता खुद परिवेश या इस पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि हम अत्यधिक दोहन करने लगते हैं। जितनी आवश्यकता है हम उससे ज्यादा उसका उपयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय तत्व बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फिर से उसी मात्रा में उपलब्ध करा पाना संभव नहीं होता। चाहे देखिए, चाहे वो जो खनिज पदार्थ है वो प्रकृति ने एक निश्चित मात्रा में हमें दे रखा है, वो दोबारा नहीं मिल सकते, यानी अगर एक बार हमने उपयोग कर लिया उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर जो बहुत सारे ऐसे जैविक तत्व हैं, चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे वो पुष्प से प्राप्त जो पदार्थ हों, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। अगर आपने किसी पेड़ को काटा, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो उतना ही बड़ा पेड़ हमें कई सालों बाद मिलेगा और उसको भी बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उन आवश्यकताओं से ज्यादा भी हम उपयोग कर रहे होते हैं तो पर्यावरणीय क्षरण की समस्या आती है। अब पर्यावरणीय क्षरण क्या है? हम पर्यावरण के तत्वों का उपयोग करते हैं, चाहे वो वायु हो, जल हो, भूमि हो। हमारे यह उपयोग एक तरफ इनकी मात्रा में कमी ला रहा है, दूसरी तरफ इनकी गुणवत्ता में भी कमी लाता है। अब गुणवत्ता में कमी जब आती है तो या तो वो नष्ट हो जाते हैं या उनका उपयोगिता घट जाती है, और ये सभी स्थितियां समाप्त होना और उनकी गुणवत्ता में कमी होना पर्यावरणीय क्षरण कहलाता है। तात्पर्य है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से विभिन्न पर्यावरणीय तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा और वन संसाधनों में जो गुणवत्ता की कमी है, और साथ ही वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा होता है या उसका ह्रास हो रहा होता है, तो पर्यावरणीय क्षरण कहलाता है। अब ये क्षरण कैसे होता है, हम खुद अनुभव करें। सामाजिक विज्ञान में जब हम भूगोल की बात करते हैं वो वास्तव में अवलोकन पर आधारित है, यानी हम अपने परिवेश को देखें, समझें और वहां हो रहे परिवर्तनों को जानने का प्रयास करें। हमने कई बार देखा होगा कि हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है और हम जा रहे होते हैं और कोई पेड़ दिखा, हमने उसको तोड़ दिया, लेकिन उस पेड़ को बनने में कितना समय लगा और आगे जब वो एक बड़ा वृक्ष बनता तब हमें उससे कितने लाभ हो सकते थे, ये जाने बिना हमने उस पेड़ को नष्ट कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो जाने अनजाने हमारे द्वारा होती हैं और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरह से हम अपनी गतिविधियों में अगर परिवर्तन लाएं और अगर ये प्रयास करें कि हम कैसे इसे सुरक्षित रखें, तो शायद हम पर्यावरणीय क्षरण को कम कर पाएंगे। वास्तव में अगर आप देखें तो हम एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण तभी कर सकते हैं जबकि हमारी गतिविधियां संतुलित हों। संतुलित से तात्पर्य है कि हम अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण या प्रकृति से प्राप्त जो स्रोत है वहां से करें, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि हम आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे संसाधनों की बात करें तो प्रकृति ने निश्चित मात्रा में संसाधनों को दिया हुआ है। जब तक उनके बारे में हमें मालूम नहीं था वो पृथ्वी पर लाखों सालों से पड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे हमें उसके बारे में मालूम हुआ, ये ज्ञान हुआ कि कौन सी तकनीक है, इसकी इसका क्या उपयोग है, इसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हमने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखें कि किसी कोई भूमि है, वहां पर पहले वन क्षेत्र था, अब हमने हम आवश्यकता हमें जनसंख्या का दबाव हुआ और वो वन क्षेत्र भी कई जगह समाप्त होने लगा, वहां पर खेती की जाने लगी। दूसरी ओर जो संसाधन थे, खनिज पदार्थ थे, उनका भी दोहन होने लगा। अब इन सब वजहों से आप देखें कि अगर वन कटेगा तो कहीं न कहीं वायु प्रदूषित होगी, जो पर्यावरण जलवायु है उस पर असर होगा, जो वर्षा की प्राप्ति होती है उसकी मात्रा में परिवर्तन आएगा और हमें कृषि के क्षेत्र में हमें सूखे का भी सामना करना पड़ेगा। वनों का कटाव हुआ तो हमें वहां पर मृदा का भी कटाव देखने को मिलने लगा। तो इस तरह से तात्पर्य कहने का यह है कि मानवीय गतिविधियां पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ा रही हैं। कैसे बढ़ा रही हैं, आइए जानें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके दो महत्वपूर्ण हम कारकों को हम देख सकते हैं। पहला तो सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। सामाजिक कारक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बढ़ती जनसंख्या। प्रकृति में संसाधन, जैसे हमने कहा कि लाखों सालों से पड़े हैं, पहले तो उनका उसके बारे में ज्ञान नहीं था, ज्ञान हुआ तो आवश्यकता कम थी उसकी, क्योंकि जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या बढ़ी तो उस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने संसाधनों का दोहन बढ़ाना शुरू किया। अब मान लीजिए भोजन की आवश्यकता है, जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो हमने एक और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनों का भी कटाव किया। वहीं उत्पादकता बढ़े इसलिए हमने रासायनिक खनिजों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू किया। अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो एक तरफ हमें जल प्रदूषण भी देखने को मिला, मिट्टी भी प्रदूषित हुई, साथ ही जब जनसंख्या बढ़ी तो शहरीकरण बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा तो हमें वहां पर वाहनों का प्रयोग होने लगा, फिर बढ़ती आवश्यकताओं के लिए कल कारखाने बनाए गए, अब उनकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी तो वायु प्रदूषण भी होने लगा। तो एक तरह से हमारी गतिविधियां जो कि बढ़ती जनसंख्या के कारण होती हैं वो पर्यावरण के क्षरण का कारण बनती हैं। जैसे अगर हम देखें तो भारत का कुल भूमि क्षेत्र विश्व का 2.4% है, जबकि लगभग हम विश्व की कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा हमारे यहाँ मिलेगा। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधनों पर दबाव तो पड़ता ही है, तो यही कारण है कि संसाधनों का दोहन हुआ और उनमें क्षरण हुआ। अब इसके बाद आता है कि कई बार हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते तो हम संसाधनों का, जैसे मान लीजिए कि घर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग हुआ, खाना बनाने के लिए भी ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा, तो इस तरह से मानवीय गतिविधियां वहां पर भी पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, उसमें क्षरण लाती हैं। इसके बाद हम नगरीकरण की बात करें, हमने जनसंख्या के साथ जब बात की थी तो इसको जोड़ा कि जनसंख्या बढ़ने से नगरीकरण बढ़ा। अब जनसंख्या बढ़ने के बाद आप देखें तो शहरी क्षेत्रों में शायद जीवन की गुणवत्ता से संबंधित ज्यादा सुविधाएं होंगी। मान लीजिए वहां पर स्कूल अच्छा है, वहां पर रहने की दशाएं अच्छी हैं, साथ ही आजीविका के ज्यादा अच्छे साधन होते हैं, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बढ़ी तेजी से प्रवास हुआ और इस बढ़ी जनसंख्या के कारण वहां पर जो आवास की सुविधा है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं विकसित हो पाई, तो वहां पर फिर आप देखेंगे कैसे स्लम्स का या अनियोजित कॉलोनियों का विस्तार होने लगता है। वहां पर आप देखें उन अनियोजित कॉलोनियों में तो आपको वहां पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं। तो यानी नगरीकरण बढ़ा, नगरीकरण के साथ साथ जो अनियंत्रित नगरीकरण है वो ज्यादा बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, और इसी वजह से शहरी क्षेत्र में आप देखें तो वहां पर चाहे वो जल निकास की व्यवस्था हो वो कई बार विकसित नहीं हो पाती, शुद्ध पेयजल की प्राप्ति भी कई बार वहां पर मुश्किल हो जाती है, और इस तरह से हम बढ़ते हुए शहरीकरण या नगरीकरण के बावजूद हम वहां पर पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित कर रहे होते हैं, वहां पर पर्यावरणीय दशाओं का हम क्षरण ज्यादा कर रहे होते हैं। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या है, शहरीकरण भी है, और उसके साथ जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ रहा होता है। हम जैसे जैसे आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, हम चाहते हैं कि जीवन को सुख संपन्न बनाने के लिए हम ज्यादा यंत्रों का प्रयोग करें। हम एसी का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, फ्रिज का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, और यही दो ऐसे उपकरण हैं जो कि बड़ी मात्रा में क्लोरोफ्लोरो कार्बन या और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे तत्वों का उत्सर्जन करते हैं। उसका असर ये होता है कि वायु प्रदूषित होती है। उसके साथ मानवीय अनुक्रियाएं हैं। हम इन उपकरणों के निर्माण के लिए बहुत सारे जो अन्य यंत्र हैं उनके निर्माण के लिए हम कारखाने स्थापित करते हैं, और इन उपकरणों का प्रयोग के लिए या अन्य तरीके की अन्य आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति के लिए हम ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं, यानी विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए जाते हैं, चाहे वो ताप ऊर्जा हो, चाहे वो जल विद्युत हो, या वो नाभिकीय ऊर्जा हो। अब इस वजह से भी आपको प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है कि कैसे हम ताप ऊर्जा का जब निर्माण करते हैं, जहां पर कोयले का प्रयोग किया जाता है, वहां पर बड़ी मात्रा में गैसों का निकास होता है और वायु प्रदूषित होती है। उसके बाद हम परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी वायु प्रदूषण हो रहा है। हम जल का ज्यादा दोहन कर रहे होते हैं तो भूमिगत जल के स्तर में कमी आती है। तो इस तरह से जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती हैं, जो कि पर्यावरण का क्षरण करती हैं, उसे प्रदूषित करती हैं। अब ये तो बात थी सामाजिक कारकों की। आर्थिक कारक कैसे हैं? वास्तव में अगर हम सामाजिक और आर्थिक कारकों की बात करें तो ये एकांगी नहीं है, ये आइसोलेशन में नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शहरीकरण बढ़ रहा है, मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगीकरण होने लगता है। अब औद्योगीकरण होता है तो आप देखें, एक और खनिजों का दोहन हो रहा, तो उन खनिजों के दोहन में अनियंत्रित रूप से मिट्टी का कटाव हो रहा। खेती, अब कच्चा माल तो आपको मिल गया और वो इसलिए हमने उसको निकाला क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो उस कच्चे माल को यानी खनिज पदार्थों को प्रसंस्कृत करने के लिए, उससे उपकरण बनाने के लिए हम कारखानों का निर्माण करते हैं, जो कि जल प्रदूषण भी कर रहे हैं और वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि कोई भी खनिज पदार्थ एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, अब जब हम उसका दोहन करते हैं यानी पृथ्वी से हमने उसको निकाल लिया, तो उसका उसको पुनर्भरण संभव नहीं होता है, यानी वो एक बार में निकाला गया और समाप्त हो गया, तो भावी पीढ़ी को इसकी कमी महसूस होगी। दूसरा, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो परिवहन के साधन के रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा के निर्माण के लिए हो, कल कारखानों में जो उसका प्रयोग होता है, तो एक ओर ये समाप्त हो रहे हैं, दूसरी ओर ये वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। फिर हम उद्योगों में प्रयोग के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, फिर वही जो प्रदूषित जल है वो वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो नदियों में प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरह से बढ़ता हुआ औद्योगीकरण जल, वायु और भूमि, इन तीनों को ही प्रदूषित कर रहा है और उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद आते ही आर्थिक विकास। वास्तव में आर्थिक विकास और औद्योगीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति में हम कैसे भौतिक प्रगति करें, इस पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और आर्थिक प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी निरंतर कर रहे होते हैं। कारण यह है कि एक ऐसी जीवन शैली निर्मित हो जाती है जो कि संसाधनों के निरंतर दोहन पर ही निर्भर है और ये बढ़ती ही जा रही है। फिर इसके साथ संसाधनों के अपव्यय की बात आती है। तो अगर हम संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, और इस दोहन के कारण ही अपनी आर्थिक प्रगति को हम बनाए रखे हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम जो है वो मानव के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल है। प्रतिकूल इस रूप में है कि एक ओर हम वायु की गुणवत्ता, आप देखें तो कैसे कई सारी खबरें आ रही होती हैं कि वायु की जो गुणवत्ता है वो सांस लेने के लिए सही नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम जो पेयजल पी रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, वो प्रदूषित है, शहरी कचरा जो है वो भूमि को भी प्रदूषित कर रहा है, रेडियो सक्रिय कचरा है, इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में हम जो ई वेस्ट क्रिएट यानी ई कचरा हम जो निर्मित कर रहे हैं, यानी अगर आप देखें तो कंप्यूटर के बहुत सारे उपकरण हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं और वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे द्वारा संसाधनों के अतिदोहन के बाद उससे जो कचरा निकलता है वो एक बड़ी पर्यावरणीय खतरे की को सामने ला देता है। इसके बाद और भी होता है कि ये तो कचरा हमें सामने दिख रहा है, लेकिन यही कचरा में पानी है वो भी रिस के जा रहा है भूमि में, वो भूमि को उसने प्रदूषित किया, जल को किया, वायु को किया, और इसके जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य पर दीर्घगामी होता है। आपने देखा होगा खबरों में कई बार कि किसी कारखाने के आसपास के क्षेत्रों में जब जल प्रदूषित हुआ, मृदा प्रदूषित हुई, तो किस प्रकार से हमें स्वास्थ्य संबंधी खतरे का सामना करना पड़ा, चाहे वो हड्डियों की विकृति हो, त्वचा संबंधी समस्याएं हो, ये हमें अक्सर खबरों में देखने को मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे अतिदोहन की वजह से निर्मित हुए और वो मानव स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गए। तो आवश्यकता क्या हो, किस चीज की आवश्यकता, इस बात की है कि हम संसाधनों का उचित उपयोग करें, और यहीं पर सतत विकास की संकल्पना सामने आती है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना सामने आती है कि हम पर्यावरण को इतना क्षरणा पहुंचाएं कि उसको फिर से संतुलित रखना असंभव ही हो जाए। परिवेश वास्तव में एक या दो दिन में नहीं बनता, पर्यावरण एक दो दिन में नहीं बनता, बल्कि लंबे समय में मानव और प्रकृति के मध्य जो सामंजस्य से बना, जो गतिविधियां हुई, उनके द्वारा इसका निर्माण होता है और इसका उपयोग आगे भी किया जाना है। यानी प्रकृति में जो तत्व उपलब्ध हैं वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो भावी पीढ़ी के लिए भी है, और आज अगर हम इनका अत्यधिक दोहन करते हैं, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शायद भावी पीढ़ी इसकी उपयोग से ही वंचित हो जाए, तब परिस्थितियां शायद इतनी दुरूह हो जाए, इतनी दुष्कर हो जाए कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता है। तो अब आवश्यकता है संसाधनों के उचित उपयोग की, ताकि हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, पर्यावरण को संतुलित रखते हुए, हम इसे भविष्य के लिए भी बचाएं, ताकि जो भावी पीढ़ी है वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग कर सके। तो एक तरफ संसाधनों को बचाना भी है, दूसरी तरफ वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, एक जीवन को गुणवत्तापूर्ण जीते हुए, और साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करना है। तो अगर हम तीनों चीजों को ध्यान में रखें, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम संसाधनों का उचित उपयोग करें ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, और साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन है और जो परिवेश है वो भविष्य के लिए भी बचा रहे, तो ये सतत विकास है, और इसके द्वारा ही हम खुद भी एक संतुलित जीवन जी सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी एक संतुलित परिवेश दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी जो गतिविधियां हैं वो कई बार अकस्मात बदलाव लाती हैं, और उन गतिविधियों की वजह से एक और मानव निर्मित त्रासदी भी हमें देखने को मिलती है, और कई बार प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं जो कि एक विभीषिका का रूप ले लेती है। तो तब आवश्यकता आती है आपदा प्रबंधन की, यानी या किसी भी त्रासदी के समय, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्रकृति जन्य हो, हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप देखें तो कोई औद्योगिक दुर्घटना है तब भी हम उसको संतुलित रखते हैं, या अगर कोई प्रकृति निर्मित दुर्घटना हो गई है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो ज्वालामुखी का विस्फोट हो या बाढ़ हो, तब भी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता महसूस होती है। भारत में अगर देखें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्थापना की गई है, ऐसी ही आपदाओं के समय, त्रासदियों के समय लोगों तक राहत पहुंचाने की। लेकिन स्वयं हम एक नागरिक के रूप में अगर जागरूक हैं, अगर हम इसके प्रति जानकारी रखते हैं तो शायद हम इन त्रासदियों के जो प्रभाव है उनको कम कर सकते हैं और या कई बार इनको होने से भी रोक सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले बात आती है मिटिगेशन की। एक तरह से कहें तो आपदा प्रबंधन को चार चरणों में रखा गया है। पहला जो है वो है मिटिगेशन। मिटिगेशन एक तकनीकी और कठिन शब्द लगता है, लेकिन इसका अर्थ है कम करना, यानी हम वो गतिविधियां ना करें जो कि त्रासदी की संभावना को बढ़ा दें, बल्कि हम अपनी गतिविधियों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह किसी भी त्रासदी या आपदा की स्थिति को होने ही ना दे। जैसे अगर हम बाढ़ की संभावना का आकलन करते हैं तो हम तटबंध बनाने की कोशिश करेंगे, हम उस क्षेत्र में जहां पर कटाव की समस्या है वहां पर वृक्षारोपण की कर सकते हैं। यानी जोखिम की पहचान करना प्रथम चरण है और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी। दूसरी बात आती है प्रिपेयर्डनेस, यानी तैयारी, यानी हम कैसे किसी भी त्रासदी के लिए खुद को तैयार रखें। तीसरा है अनुक्रिया, यानी हम आ ही जाए त्रासदी तो क्या करें। चौथा है पुनरुत्थान, यानी त्रासदी के समय जो नुकसान हुआ उसको हम कैसे पिछली स्थितियों तक लौटा सकते हैं बहुत सारे पुनरुत्थान कार्यक्रमों के द्वारा। तो इस तरह से इन चारों चरणों को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे पर्यावरणीय क्षरण और आपदा प्रबंधन की, जिसमें हमने पर्यावरण क्षरण का अर्थ, कारण और उसके परिणाम के बारे में बात की, साथ ही जाना कि कैसे हम सतत विकास को हम अपनाएं तो हम भविष्य के लिए भी आने वाली पीढ़ी को हम इन संसाधनों को एक उपहार के रूप में दे सकते हैं। नमस्कार।